आप सबको नमस्ते। योग दर्शन में, योग की चर्चा में हम पिछले बार जाना अभ्यास और वैराग्य से कैसे हम योग को साधते हैं, और जो प्रिपेरेटरी स्टेज के लिए हमें क्रिया योग, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति करनी होती है। उसके बाद हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये आठ अंगों में जो यम है, तो यम के जो पांच बेसिक कंपोनेंट है जो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है डे टू डे लाइफ में, वह है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ना? देख लीजिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमः। अहिंसा है फ्रीडम फ्रॉम इल विल, सत्य मतलब ट्रूथ, अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य कॉन्टिनेंस, अपरिग्रह नॉन पोजेसिवनेस। अहिंसा की चर्चा हमने की, किसी को कभी भी किसी के प्रति किसी भी सिचुएशन में नुकसान पहुंचाने की, हर्ट करने की, अपने मन में किसी भी तरह के विचार ना आने देना। करना दूर की बात है, फिजिकली, ओरली, मेंटली, ये तीन लेवल पर हम काम करते हैं। फिजिकली, ओरली करना दूर की बात है, मेंटली भी इस तरह के विचार ना आए, किसी के प्रति कोई शत्रुता, दुश्मनी, एनिमिटी भाव, एनिमिटी का भाव ना रहे, इसी को कहते हैं अहिंसा। पिछले बार ये भी हम चर्चा कर रहे थे सत्य क्या है। तो जैसा हमने देखा, जैसा जैसा हमने सुना, जैसा जाना, उसी तरह का बोलना, उसी तरह का सोचना, जो मन में चल रहा है वाणी में वही चले, इसी को हम कहते हैं सत्य। जैसे कि पतंजलि के योग दर्शन में, पतंजलि के योग दर्शन में व्यास भाष्य में लिखते हैं, सत्यम यथार्थे वांग मनसे, यथा दृष्टम यथानुमितम, यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। यहां तक हमने किया था। सच, जब हम सच की बात करते हैं, उसमें दो तीन चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमें जानना है। एक तो है कि सच सच तो एक ही होता है, पर बोलते समय हम उसको बहुत तरह से बोलते हैं। इवन हम झूठ नहीं भी बोलते हैं, सच बोलते भी हैं, पर वो सच में भी बहुत सारा हम ट्रिक अपनाते हैं, डिसेप्टिव वे अपनाते हैं। तो महर्षि व्यास उसके और भी हमें वार्निंग देते हैं कि इस तरह का सच, वो सच का मतलब सच होता है, उसमें किसी भी तरह का डिसेप्शन, किसी भी तरह का ऐसा ट्रिक जो सच होते हुए भी झूठ को प्रमोट करता है, ऐसे सच से भी बचना चाहिए। उसके लिए जो वो सेंटेंस यूज करते हैं, परत्र स्वबोध संक्रांतये वा गुप्ता, सा यदि न वंचिता भ्रांत वा प्रतिपत्ति बंध्या वा भवेदिति। जो सत्य हम सच बोलें, अगर आपको लगता है कि आप सच बोलते हो, इसमें ये तीन चीजें नहीं होना चाहिए, ना ये डिसेप्टिव होना चाहिए, ना ये इसको सुनने के बाद लिसनर कंफ्यूज्ड होना चाहिए, ना इस ऐसा जो सत्य है वो बैरन ऑफ नॉलेज, अर्थात इसका कुछ समझ में ही नहीं आना चाहिए क्या हुआ। तीन चीजें, ये कंफ्यूज्ड मीनिंग ना दे, इसको सुनने के बाद व्यक्ति कंफ्यूज ना हो, डिसेप्शन में ना जाए, और तीसरा है कि इसका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। हम ज्यादातर समय जब सच बोलते हैं, अनेक समय में बहुत सारे लोग सच बोलते हैं, वो सच को इस एंगल से भी बोलते हैं जिसमें झूठ, सच बोलते हुए भी सामने वाला झूठ का सेंस लेता है। अंग्रेजी में इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द मिलता है, होता है पैल्टरिंग। पैल्टरिंग का अर्थ होता है, वो आप देखिएगा वीडियो स्लाइड देखिए, जब एक कम्युनिकेटर ये वक्ता बोलने वाला सच तो बता रहा है पर ऐसे तरीके से बता रहा है कि सुनने वाला फॉल्स कंक्लूजन की ओर जाता है, एक फॉल्स कंक्लूजन निकालता है, गलत कंक्लूजन निकाल सके। तो ऐसे सच में बोलने वाला अपने आप को कन्विंस तो करता है कि मैं सच बोलता हूं, पर एक्चुअली वो सच नहीं बोलता, वो डिसेप्टिव होता है, वो छल कर रहा होता है, वो कपट कर रहा होता है, और वो झूठ का एक दूसरा फॉर्म होता है। आपको कहीं पूछे, सपोज मान लीजिए आपके घर में छोटी छोटी डिसेप्टिव सत्य कैसे बोलते हैं, सपोज आप बहुत मिठाई खाते हैं, डॉक्टर ने पूछा कि आप मिठाई खाते हो, नहीं मैं नहीं खाता हूं, पक्का नहीं खाते हो, हाँ जी देखो एक हफ्ते से मैंने एक भी मिठाई नहीं खाई, एक हफ्ते से नहीं खाई ये सच है, पर एक हफ्ते से पहले आप खाते थे ये भी सच है, आप उस बात को मान नहीं मान करके एक हफ्ते में नहीं खाया ऐसे झूठ बोलते हैं। तो इस तरह के हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे सच बोलते हैं जिसका इंटेंशन सच नहीं है, झूठ होता है। ये भी नहीं होना चाहिए जब आप योग की प्रैक्टिस करो, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करो। तो सच सच है, झूठ झूठ है, पर सच को यूज करके भी हम झूठ बोलते हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए कुछ सच हाफ ट्रूथ भी होता है, आपने जो देखा वो पूरा ना बोल के हाफ बोलते हैं, उससे भी कंफ्यूजन पैदा होता है, उससे भी मीनिंग नहीं आता है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर के बारे में आता है, युधिष्ठिर बड़े सच्चा व्यक्ति थे, हमेशा सत्य बोलते थे, ऑनेस्ट थे, पर उनको जब लड़ाई के महाभारत की लड़ाई के मैदान में द्रोण को मारना मुश्किल था, तो उनके सामने एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि द्रोण ने शपथ किया था, एक प्रॉमिस किया था, जिस दिन मुझे मेरा बेटा मर जाएगा या मुझे पता चलेगा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया है, मैं उस दिन से लड़ाई करना छोड़ दूंगा या हथियार पकड़ना छोड़ दूंगा। ये पांडव पक्षों को पता था और द्रोण को हराना मुश्किल था, तो पांडवों ने एक स्ट्रैटेजी निकाली। अश्वत्थामा को मारना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि अश्वत्थामा भी बहुत पावरफुल था, तो किसी तरह अश्वत्थामा को लड़ाई करते करते बहुत दूर ले लिए गए, युद्ध के मैदान से बहुत दूर ले लिया गया, जो कि आने में बहुत टाइम लगे। और भीम का एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, उस हाथी को मार दिया गया। मार करके पांडव पक्षियों ने चिल्लाया कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता। और द्रोण को बोला जोर जोर से कि अश्वत्थामा मर गया, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि अब द्रोण जो है वो हथियार छोड़ देंगे तो उनको मारना आसान है, वैसे द्रोण को मारना मुश्किल काम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर द्रोण ने हथियार त्यागा नहीं, तो पांडव पक्षों के लोगों ने कहा कि आप तो झूठे हो, आपने तो प्रॉमिस किया था कि जब आपको पता चले अश्वत्थामा मर गया तो आप हथियार छोड़ दोगे। तो उन्होंने कहा मुझे भरोसा नहीं, इट मे बी ए वार स्ट्रैटेजी, हो सकता है आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मुझे आप पर भरोसा नहीं, अगर युधिष्ठिर कहे तो मैं मान जाऊंगा क्योंकि युधिष्ठिर सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। तो युधिष्ठिर के पास गए पांडव के लोग समझाने कि आप द्रोण को बोलिए कि अश्वत्थामा मर गया है। युधिष्ठिर ने बोला मैं ऐसा कैसे बोलूं, युधिष्ठिर अश्वत्थामा मर गया, मुझे तो नहीं पता अश्वत्थामा मरा कि नहीं मरा ना। अच्छा ऐसा करिए, ये तो बोल सकते हैं ना, आपको ये तो पता है ना अश्वत्थामा नामक एक हाथी मरा है ना, ये मैंने सुना है ना, आप उतना बोल दो, आप इतना बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया है, हाथी मरा या इंसान मरा मुझे पता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा ये मैं बोल सकता हूं, पर पहला सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर ने जोर से बोला, अश्वत्थामा मारा गया है, अश्वत्थामा हतो। और इतना बोलते ही सारे पांडव साइड में जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जोर जोर से ड्रम और शंख बजाने लग गए। युधिष्ठिर का सेकेंड लाइन था, हाथी मरा या इंसान मरा पता नहीं है, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, हाथी मरा या इंसान मरा पता नहीं है। तो द्रोण ने सिर्फ अश्वत्थामा मरा ये बात सुनी और उन्होंने अस्त्र त्याग दिया, हथियार त्याग दिया और अर्जुन को मारना आसान हुआ द्रोण को। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला था। जब युधिष्ठिर मरे, मरने से पहले जब काउंट हुआ, पता चला उन्होंने जीवन में 3 बार झूठ बोला था, उनमें से एक झूठ ये भी था। युधिष्ठिर आर्ग्यू कर सकते थे कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो बोला अश्वत्थामा मरा, हाथी मरा या इंसान मरा मुझे पता नहीं है। पर युधिष्ठिर को पता था जो वो बोल रहे हैं वो डिसेप्टिव हुए हैं, ये एक छल का तरीका है, आधा सत्य बोलना या सच को ऐसे बोलना, थोड़ा ट्विस्ट करके, वर्ड्स को ऐसे ट्विस्ट करके बोलना जिससे कि वो एक अलग प्रकार का रूप दे। ज्यादातर जब आप लोग प्रोफेशनल इंटरव्यूज देने जाते हैं नौकरी के लिए या जॉब के लिए जाते हैं, या इस तरह के कोई पहली बार लड़का लड़की मिलते हैं डेटिंग के लिए जाते हैं, वहां भी इस तरह के झूठ का, मतलब इस तरह के सच का काफी यूज होता है। जहां सच तो आप बोलते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, पर उसको इस रूप में प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेबल ऐसा बनाते हैं जो सुनने वाला है, जो इंटरव्यू लेने वाला है या जिसके साथ लड़का या लड़की डेटिंग करते हैं फर्स्ट टाइम, वो इम्प्रेशन पड़े कि वो कितना, जो अगर वो 10% वो 100% का इम्प्रेशन पड़े। ये भी नॉर्मल लाइफ में आप जो करते हैं दैट्स ए डिफरेंट थिंग, हम जो भी करते हैं। पर अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ में जाना है, अगर आपको योग मार्ग में जाना है, पतंजलि कहते हैं इस तरह के सच का भी कोई ये इस तरह के सच भी झूठ में ही काउंट होंगे। तो इसीलिए कोई भी सच अगर वो हाफ ट्रूथ के रूप में बोला जाए, अगर वो डबल मीनिंग के साथ बोला जाए, इस भाव के साथ, इस फीलिंग के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि किसी को डिसीव किया जाए, तो भी वो सच झूठ ही माना जाएगा, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन में सच्चाई नहीं है। तुम वाणी को, शब्द को ट्विस्ट करते हो, तुम्हें पता है तुम क्या हो, पर द वे यू आर प्रेजेंटिंग इट, इट लुक्स समथिंग एल्स, समथिंग बेटर, समथिंग लोअर। जैसे हम अपने शत्रु के बारे में बात करें, एनमीज के बारे में, कोई शत्रु की अचीवमेंट के बारे में बात करें, उसी अचीवमेंट को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं ऐसा लगता है मानो एक नॉर्मल चीज है, छोटी सी चीज है। अगर वही अचीवमेंट मैं या मेरे फैमिली का मेंबर करे, मैं ऐसे प्रेजेंट करता हूं कि ये कितना स्पेशियल है, कितना पावरफुल है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है, सच तो हम बोलते हैं बट द वे वी प्रेजेंट इट, ये भी डिसीव की ओर ले जाता है, डिसेप्शन की ओर ले जाता है। अगर वो डिसेप्शन की ओर लेता है, अगर सुनने वाले को, पढ़ने वाले को वो एक्चुअल पिक्चर नहीं देता है, तो पतंजलि और व्यास के मत में ये भी झूठ का ही अलग रूप होता है। सत्य का और एक खतरनाक रूप है सच का, और ये सच के साथ ज्यादातर होता है, क्योंकि जो हिपोक्रेसी है और सच है, इन आम लोगों के लिए ऑनेस्टी और हिपोक्रेसी को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फर्क क्या है? हिपोक्रेसी में आपका इंटेंशन कुछ अलग होता है और आप कुछ अलग करते हो, आप बोलते कुछ हो सकता है आप सच बोलते हो पर आप ऐसा मानते नहीं हो, या आप झूठ बोलते हो पर सच मानते हो। इसी तरह सच का जो एक दूसरा रूप है जिसकी ओर महर्षि व्यास बताना चाहते हैं, वो है एषा सर्वभूतोपकारार्थं प्रवृत्ता न भूतोपघाताय। ये जो सत्यवाणी, ये जो ट्रुथ स्पीकिंग या ऑनेस्टी है, वो दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, दूसरों का इंजुरी नुकसान करने के लिए नहीं। दैट ट्रूथ कैन ओनली बी सेड टू हैव एम्प्लॉयड फॉर द गुड ऑफ अदर्स एंड नॉट फॉर देयर इंजुरी। सच का एक और रूप है जो हम लोग करते हैं, वो है कि हम सच को कभी कभी हथियार बनाते हैं, हथियार समझते हैं, वेपन के रूप में यूज करते हैं। क्यों? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, दूसरे को बर्बाद करने के लिए हम सच को सच बोलते हैं पर हथियार यूज बना के। कल तक तो आपका किसी से दोस्ती थी, मित्रता थी, फ्रेंडशिप थी, खूब आप दोनों मिलते फिलते थे, सब कुछ करते थे, जिंदगी का हर सुख दुख अच्छा बुरा एक दूसरे से शेयर करते थे। हर व्यक्ति में कमी है, सब में कमी है, आप में भी कमी है, मेरे में सब में कमी है, और वो फ्रेंड होने के नाते आपके सामने सारा सुख दुख शेयर किया। कल आपके साथ उसकी बनी नहीं, आपका आपका फ्रेंडशिप खत्म हो गया, कुछ झगड़ा हुआ, और आप पब्लिक में जाकर के उसकी जो वीक पॉइंट्स हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया था, आप जोर जोर से बोलने लगते हैं। जब आपको कोई कहे क्यों ऐसी गंदी बातें बोलते हो, तो आप चिल्लाते हो, मैं तो सच्चा सच्चा आदमी हूं, मैं सच बोलता हूं, किसी को चुभे तो चुभे, मैं क्या करूं, सच तो चुभता है। ध्यान दीजिए, सच कभी नहीं चुभता। ये एक गलत परसेप्शन है, इट्स अ मिसपरसेप्शन है कि सच चुभता है, सच कड़वा होता है। सच कभी भी कड़वा नहीं होता है, ना सच कभी चुभता है। सच तभी तो चुभता है या कड़वा होता है जब बोलने वाले चुभाने के लिए बोलता है। जब बोलने वाला कड़वा बनाने के लिए सच को यूज करता है, तब सच चुभता है, सच कड़वा होता है। तो महर्षि व्यास पतंजलि के योग दर्शन के भाष्य में ये वार्न करते हैं, अगर तुम सच को हथियार के रूप में यूज करते हो, दूसरों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, वो सच सच नहीं, वो हजारों पापों से भी बड़ा पाप होता है। दैट मीन्स यू आर यूजिंग द ट्रूथ टू जस्टिफाई योर वायलेंस। इसीलिए महर्षि व्यास कहते हैं, तुम्हारा सच दूसरों के भलाई के लिए होना चाहिए, दूसरों के नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए महर्षि मनु, इसी कॉन्टेक्स्ट में महर्षि मनु मनुस्मृति में लिखते हैं, सत्य को डिफाइन करते हैं, और बड़ा फेमस श्लोक है, मोस्ट ऑफ यू मे नो इट। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। मनु कहते हैं, सच बोलो पर प्लीजेंट बोलो, स्पीक द ट्रूथ पर द प्लीजेंट ट्रूथ, प्रिय सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। डोंट स्पीक अनप्लीजेंट ट्रूथ, अप्रिय सत्य, कड़वा सच मत बोलो। अब यहां थोड़ा सा मिसपरसेप्शन बनेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी क्या? अच्छा, मनु ने कहा मीठा सच बोलो, कड़वा सच मत बोलो, फिर हम इससे क्या मिस इंटरप्रेट करते हैं? अच्छा, मतलब थोड़ा एग्जाजरेट करके बोलो, अगर कोई खाना अच्छा नहीं भी बना है, बोलो नहीं बहुत बढ़िया बना है, दूसरों को खुश करने के लिए बोलो। महर्षि मनु आगे वार्न करते, नहीं, प्रियम च नानृतम ब्रूयात। ये प्लीजेंट अनट्रुथ नहीं बोलना, शब्द दिया कि प्रिय सत्य को प्रिय बोलना, प्रिय सत्य बोलना, प्लीजेंट ट्रुथ बोलना, प्लीजेंट अनट्रुथ नहीं बोलना। किसी को खुश करने के लिए या अपना काम बनाने के लिए मीठा झूठ नहीं बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। क्षत्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। और यही मूल धर्म है, यही सनातन धर्म है। सच बोलो पर मीठा सच बोलो, कड़वा सच मत बोलो, मीठा झूठ मत बोलो। इसका क्या भाव है, मीठा सच और कड़वा सच? सच कड़वा नहीं होता है, सच मीठा नहीं होता है। जिस तरह हम सच को प्रेजेंट करते हैं और जिस इंटेंशन के साथ हम सच को प्रेजेंट करते हैं, उससे सच कड़वा होता है या सच मीठा होता है। आप किसी आदमी को अगर रिस्पेक्ट करते हैं, सपोज कोई व्यक्ति टीचर है स्कूल में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, और एक टीचर को जब आप टीचर बोलते हो, ये सच है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप जिस तरह के टोन यूज करके आप टीचर को टीचर बोलते हो, तुम एक टीचर हो, तुम छोटा सा टीचर हो, तुम्हारे एटीट्यूड उस टीचर को बोलते समय तुम्हारे अंदर का जो इंटेंशन, वो टीचर सच तो बोलते हो पर इसको एक कड़वा बना देता है। उसी टीचर को जब आप रेस्पेक्टफुली बोलते हो, इस इंटेंशन के साथ कि आप उसको रेस्पेक्ट करते हो, तो वो टीचर शब्द बड़ा मीठा होता है, बड़ा सूथिंग होती है। इसीलिए कहा, आप क्या बोलते हो, सच बोलते हो ये जरूरी है, पर वो सच किस तरीके से बोलते हो वो डिटरमिन करता है कि वो तुम अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो। हर सच बोलने वाला अच्छा आदमी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। बुरा झूठ बोलने वाला अच्छा आदमी नहीं है, ये पक्का है। पर हर सच बोलने वाला अच्छा आदमी है, ये गलत है। जब सच को आप सच को हथियार बना के दूसरों को कष्ट देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, अपनी जलेसी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हैं, तब वो सच पाप से भी बदतर होता है। इसीलिए जो एक बड़ा सुंदर शब्द है उसके लिए, दैट इज कॉल्ड ब्रूटल ऑनेस्टी। तो ब्रूटल ऑनेस्टी क्या होता है? जब आप सच को हथियार बनाते हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप ट्रूथ स्पीकर नहीं हो, आप सिर्फ ट्रूथ को एक हथियार बनाते हो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए। और वो जो सत्य को तुमने हथियार बनाया, वो तुम्हें वायलेंस करने के लिए तुम खुद खुद अपने आप को कन्विंस करते हो या जस्टिफाई करते हो। बट एक्चुअली ये सच वायलेंस का एक रूप होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम सच बोलते हैं, उसके उसमें टैक्ट और दूसरों की जो दूसरे लोगों की जो सेंसिटिविटी, उसका भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और देखेंगे अपने घर में भी, जो पति और पत्नी में जितने भी लड़ाइयां होती है या ऑफिस में जितने भी लड़ाइयां होती हैं, उस लड़ाइयों में बहुत बड़ा पार्ट रोल करता है हम क्या बोलते हैं, नहीं हम कैसे बोलते हैं। इसीलिए सभी वेदों में, चारों वेदों में आपको मिलेगा कि वो कहते हैं मीठा बोलो, मधु बोलो, मीठा बोलो। पति पत्नी के उपदेश में भी वेद बोलता है मीठा बोलो। बच्चे और माँ बाप के रिलेशनशिप के लिए भी वेदों में मंत्र आता है मीठा बोलो। मित्र दोस्त और दोस्त के बीच में कन्वर्सेशन भी बोलते हैं मीठा बोलो। तो ध्यान रखिए, सच अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सच को किस इंटेंशन से बोला जाता है, उससे सच अच्छा या बुरा जाना जाता है। और एक इंटरेस्ट, इसीलिए पतंजलि आगे महर्षि, इसीलिए महर्षि व्यास आगे लिखते हैं, यदि चैवमप्यभिधीयमान भूतोपघात परैव स्यान्न सत्यं भवेत् पापमेव भवेत्। अगर कोई सच को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए सच बोलता है वो सच नहीं वो पाप होता है। इफ हाउ एवर इट प्रूव्स टू बी इंजूरियस टू लिविंग बींग्स इवन दाउ अटर्ड अ सच इट इज नॉट ट्रू इट इज ए सीन ओनली। और उससे होता क्या है कहते तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण कष्टम तमः प्राप्नुयात् बाय दिस आउटवर्ड अपीयरेंस दिस इज ए पेसिमाइल ऑफ वर्च्यू एंड वन गेट्स इनटू पेनफुल डार्कनेस। आपको लगा कि मैं सच बोला तो सच बोलने से पुण्य मिलता है धर्म होता है पर आप धन धर्म या पुण्य नहीं कमा रहे हो आप एक तरह के आप पाप से भी बदतर पाप कमा रहे हो क्योंकि आपने सच को हथियार के रूप में यूज किया। ज्यादातर झूठे लोग ज्यादातर बेईमान लोग भी सच बोलते हैं। कब बोलते हैं जब वो दुश्मनों से फाइटिंग करते हैं। पॉलिटिक्स में इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखेंगे हर डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टी पाप करता है गलत सही काम करते हैं पर जब कोई विरोधी पार्टी अपोनेंट पार्टी अगर रूल करता हो तो जो दूसरा पार्टी है वो उस रूलर पार्टी की उन्हीं बुराइयों को बताता है जोर जोर से जिन बुराइयों को वो खुद जब रूलिंग पार्टी में रूल करते थे तब करते थे। तो इसीलिए कहा कि सच बोलते समय कुछ चीजों को ध्यान रखना ऐसा ना हो कि तुम्हारा सच दूसरों का भी नुकसान करे और तुम्हारा भी नुकसान करे। और उसमें महर्षि व्यास कंक्लूड करते हैं तस्मात् परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यम ब्रुयात्। इसीलिए हर किसी को जब भी वो सच बोले उसको प्रॉपरली एग्जामिन करके उसकी परीक्षा करके फिर वो सच को बोले वो सच सबके कल्याण के लिए है या नहीं है। जब वो कल्याण की बात आती है इसमें भी क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग जो है वो सेल्फिश होता है उसकी अपनी सेल्फ एजेंडा हर जगह काम करता है। जब ऋषि ने कहा कि सबका कल्याण देख करके सच बोलो हम सबके कल्याण में खुद का अपना फैमिली का कल्याण ले लेते हैं मतलब हम अपने और अपने फैमिली के कल्याण के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कोई भी ऋषि ये रिकमेंड नहीं करता है कि आप झूठ बोलें बस वो आपको वार्न करते हैं आपको वो जगाते हैं आपके अंदर वो अवेयरनेस लाते हैं। सच बोलते समय तुम्हारा इंटेंशन में भी वो प्योरिटी होनी चाहिए तुम्हारे सच कहने की प्रोसेस में भी वो प्योर ऑनेस्टी होनी चाहिए सच बोलते समय इंटेंशन में भी ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो इंटेंशन में भी जब ऑनेस्टी हो उस बोलने के प्रोसेस में भी जो ऑनेस्टी हो जो बोल रहे हो अगर वो ट्रूथ है तब जाकर के वो सत्य सत्य होता है नहीं तो सच हिंसा का वायलेंस का एक हथियार बन जाता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि का जो सत्य है योग यम के रूप में वो सत्य एक सच बोलना विथ ए प्योर फीलिंग प्योर इंटेंशन विथ ए प्योर प्योर प्रोसीजर। अगला जो यम का जो तीसरा कंपोनेंट है अहिंसा सत्य वह अस्तेय। देखिए महर्षि व्यास लिख अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना नॉन स्टीलिंग। महर्षि व्यास लिखते हैं स्तेयम शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतस्वीकरणम तत्प्रतिषेध पुनरस्पृहारूपम अस्तेयम। स्तेय कहते हैं अनलॉफुली विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर लॉ जब दूसरे की सामान चीजों को हम अपना बना लेते हैं उसे चोरी कहते हैं और उस चोरी को ना करना और मन में विचार भी नहीं लाना कि मैं दूसरों के सामान इस तरह अनलॉफुली अपना बनाऊं उसी को अस्तेय या नॉन स्टीलिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए, चोरी का अर्थ यह नहीं है कि कोई आपके घर में दरवाजा तोड़ के टीवी चोरी कर लिया, लैपटॉप चोरी करके ले गया, पैसा ले गया, ऑर्नामेंट्स ले गया, यह भी चोरी है। पर यही सिर्फ चोरी नहीं है, चोरी एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। महर्षि व्यास कहते हैं, किसी के भी संपत्ति को, किसी के भी सामान को जब आप अनलॉफुली, जो लॉ के हिसाब से मोरली, स्पिरिचुअली, वर्चुअली हो, वैल्यू के दृष्टि से अगर सही नहीं है, अगर आप ऐसा कोई इमोरल रास्ते से उस चीज, अनलॉफुली उस चीज को लेते हैं, वो चोरी भी है। जो आपके घर से टीवी चुराता है, पैसा चुराता है, वो तो छोटा मोटा चोर है। दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े चोर होते हैं, उनको हम चोर नहीं मानते हैं, उनको हम बड़े आदमी मानते हैं। वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, वो कोई कॉरपोरेट पर्सन हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा एजुकेशनलिस्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर भी हो सकता है। चोरी कोई भी कर सकता है। चोरी करने के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं। हमारा एक परसेप्शन है कि जो बल्गर है, जो 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 डाकू है, या जो जो घर में घुस के चोरी करता है, बंदूक दिखा के चोरी करता है, अंधेरे में चोरी करता है, उसी को चोरी करता है। ये मेरी बात नहीं है। मनुस्मृति चोरियों का एक बड़ा डिटेल में एनालाइज करता है। आजकल ये जो मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, वो तो आजकल बहुत हर सब्जेक्ट में हर किसी को पता है। मैं बस आपको बताना चाहता हूं, हमारे शास्त्रकार भी इन चीजों के बारे में अनकॉन्शियस नहीं थे, उनका भी पूरा ज्ञान होता था। तो मनुस्मृति अपने 9वें अध्याय में लिखते हैं, द्विविधान तस्करान विद्यात् परद्रव्यापहारकान प्रकाशांश्च प्रकाशांश्च चार चक्षुर महीपति। कहते राजा को ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है। दो तरह के चोर होते हैं, एक जो उजाला में चोरी करता है, उजाला समझते हैं, खुलेआम चोरी करता है, एक जो छुपा के चोरी करता है। जो ओपनली चोरी करता है, रॉब करता है, और जो सीक्रेटली या छुपा के चोरी करता है। ओपनली चोर क्या है, कहते प्रकाश वंचकास्तेषां नानापन्योपजीविनः प्रचन्न वंचकास्त्वेते येस्ते नाटविकादयः। बोले ओपन डिसीवर्स कौन होते हैं, खुलेआम चोरी करने वाले कोई कौन होते हैं? बोले वो व्यापारी, वो ट्रेड्समैन जो कुछ गलत तरीके से बेचते हैं, जैसे फॉल्स प्रॉमिस करके, फॉल्स वेट करके, या एग्जाजरेट करके, या पैसे को जितना होना चाहिए उससे ज्यादा रेट लेकर के बेचते हैं, उनको कहा जाता है खुलेआम चोरी करने वाले या ओपनली चोरी करने वाले। छुपा के चोरी करने वाले जो बर्गलर्स होते हैं, रॉबर्स होते हैं, या जंगल में जो डाकू होते हैं, जब आपका खिड़की दरवाजा तोड़ के कोई चोरी करता है, या आपके गाड़ी खोल के कोई चोरी करता है, ये सब सीक्रेट चोर होते हैं। और भी मतलब महर्षि मनु और भी बहुत सारे तरह के चोरों की, चोरी की डेफिनेशन देते हैं। रिमेम्बर, चोरी एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप कहीं भी हो, अगर आप वो स्टेट ऑफ माइंड में हैं, तो आप कभी भी चोरी कर सकते हैं, उसमें नो डाउट है। आप एक गरीब से गरीब आदमी को देखते हैं जो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, उसमें भी आपको ऑनेस्ट लोग मिलते हैं, ज्यादातर ऑनेस्ट मिलते हैं। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है कि रिक्शा चलाने वाले ऑटो चलाने वाले के साथ गए ऑटो में बैठ के, और अपना बैग भूल गए। इवन एक एक बैग में कहीं मिलियंस ऑफ रुपीज या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर होता है, और वो व्यक्ति इतने ऑनेस्ट होते हैं, उसको अगर एड्रेस मिल जाए उसके घर पहुंचा देते हैं, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं। तो गरीब चोरी करता नहीं है। और ऐसा भी होते हैं कि बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग चोरी करते हैं। इसीलिए मनुस्मृति आगे कहते हैं, उत्को चकाश्चोपाधिका वंचका कीटवास्तथा मंगलादेश वृत्ताश्च भद्राश्च क्षणिके सह असम्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्चिकेश्चकः शिल्पोपचार युक्ताश्च निपुणः पन्ययोषितः। जो भी ब्राइब लेता है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ज्यादातर सरकारी ऑफिसर ब्राइब लेते हैं, ज्यादातर बहुत सारे। जो चीट करता है, वो चीट आप एग्जामिनेशन में परीक्षा हॉल में बैठ के पेपर देते समय, टेस्ट देते समय चीट करिए, या लोगों को चीट करके ठगिए। जो गैम्बलर्स होते हैं, जुआ खेलने वाले, और जो हिपोक्रेट्स होते हैं, जो सूत सेयर्स होते हैं, जो भविष्यवक्ता आपका भविष्य बताते हैं, मनो कहते हैं, वो भी सब चोरी चोर के कैटेगरी में आते हैं। और फॉर्च्यून टेलर्स, जो भाग्य बोलते वाले, आप लोगों में से बहुत हैं जो ऐसे जो फॉर्च्यून बताने वाले जी, बताओ भाई। और हाँ, पाल्मिस्ट, जो हाथ देख करके आपको भविष्य बताते हैं, आपके भाग्य बताते हैं। ये भाग्य बताने वाले, भविष्य बताने वाले, हाथ की रेखा देखने वाले महर्षि मनो कहते हैं, ये सब चोर होते हैं। बी केयरफुल, है ना। और जो ऑफिशियल्स ऑफ हाई रैंक, जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठने वाले ऑफिशियल्स होते हैं, या फिजिशियंस, डॉक्टर्स भी होते हैं, जिनका पब्लिक के को सेवा करने के का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी जब अपने काम में गड़बड़ियां करते हैं तो वो भी चोर के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम भारत में देखते हैं, मोस्ट ऑफ डॉक्टर के पास आप जाएं, वो सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मोस्टली चोरी करते हैं, नो डाउट। इंडियन हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ओपनली चोरी करते हैं, हर चीज की वो गलत इस्तेमाल करते हैं। इवन जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी होते हैं, कोई भी डॉक्टर्स देखें, मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स देखेंगे, वो पेशेंट के लिए उनकी ट्रेनिंग, स्किल, सब कुछ होत पेशेंट की सेवा के लिए है, पर वो पेशेंट से ज्यादा फार्मासी कंपनी की सेवा करते हैं, क्योंकि फार्मासी वाले जो होते हैं वो उनको काफी सारा ब्राइब करते हैं, कौन सा मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना है, ये पेशेंट के से ज्यादा वो डिसीजन लेते हैं, फार्मासी कंपनी से कितना मिला है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर चोर होता है, हर ऑफिशियल चोर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहीं भी हो, जब भी वो अपने प्रोफेशन के साथ जो उसको करना चाहिए वो ना करके और कुछ करता है पैसा कमाने के लिए, वो चोरी में काउंट होता है। इसीलिए चोरी एक एटीट्यूड होता है। और वो क्या एटीट्यूड? इट्स एन एटीट्यूड टू अटेम टू गेट एज मच एज वन कैन विथ एज लिटिल एफर्ट एज पॉसिबल फ्यूल्स ऑल फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट, फ्रॉड, गैम्बलिंग, चीटिंग, and it may be on examination in school or manipulation of subordinates and colleagues in the workplace. Corporate field में भी बहुत होता है, अपने जो colleagues होते हैं, साथ काम करने वाले या subordinate होते हैं, उनको कैसे manipulate किया जाता है, ये भी चोरी में आता है। इसका simple bottom line क्या है? अगर मेरे अंदर ये attitude है कि मैं मनी, नेम, फेम, पावर या पोस्ट या किसी भी तरह के बेनिफिट के लिए जो मैं डिजर्व नहीं करता हूं या जिसके लिए मैंने मेहनत नहीं किया, उस तरह का अनलॉफुल काम करता हूं, वो सब चोरी में आता है। ऐसे होता क्या है? इस चोरी को योग के साथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? वो इसीलिए कि जब हम चोरी का एटीट्यूड पालते हैं अपने अंदर, तो हमारा माइंड में गलत विचार आने लगते हैं, हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है और वो हमारी इच्छा, जो ग्रीड, लालच, डर और गिल्ट को, गिल्ट के कारण हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। नंबर टू, इस तरह की जो टेंडेंसी है वो हमारे अंदर इस तरह के एटीट्यूड, इगोइस्टिक टेंडेंसी को बढ़ाता है और हमारे अंदर इट्स ए मैनिफेस्टेशन ऑफ फियर एंड वीकनेस इन द फेस ऑफ डिजायर। जब आपकी नेचर बन जाए, एटीट्यूड बन जाए चोरी करने का, बेईमानी करने का, फ्रॉड करने का, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो शॉप लिफ्टिंग हो या बड़े बड़े ड्राइव लेकर के काम को इधर उधर करना हो, तो आप अपनी सेल्फ के ऊपर कंट्रोल करना खो देते हैं। यू जस्ट गिव अप योर ओन पावर टू कंट्रोल योर सेल्फ। आपका माइंड ऐसा बन जाता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हो। बहुत सारे चोरों को जब सुधारने की कोशिश की जाती है, जो चोर थे और चोरी छोड़ना चाहते हैं, तो उनको मान लीजिए कोई काइंड हार्टेड पर्सन, दयावान व्यक्ति कहता है आप चोरी करना छोड़ दो, मैं आपको हेल्प करूंगा, तो उनको हेल्प करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, भाई क्यों चोरी करते हो ना, मैं गरीब हूं, पैसा नहीं है, ये नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके ठीक है, नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको रोजगार दिलाएंगे, अब चोरी करना बंद कर दो। वो बंद कर देता है पर उसके अंदर वो जो एटीट्यूड है वो जाता नहीं है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर किसी, कहीं भी कोई सामान पड़ा हुआ मिले, उनका हाथ खुजलाता है, वो जैसे भी हो चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुझे याद है दिल्ली में एक बार, बहुत साल पहले मीडिया में एक काफी बड़ा न्यूज बना, तो एक प्रोफेसर कपल है, दोनों पति और पत्नी प्रोफेसर से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, तो उनको चोरी करने का वो हैबिट है, लत है। सबसे पहले पत्नी पकड़ी गई शॉपलिफ्टिंग में, दिल्ली में या नोएडा में किसी स्टोर में, तो वो जो आजकल जो कैमरा लगी होती है, वो कैमरा के द्वारा, वीडियो कैमरा के द्वारा पता चला। जब पता चला तो देखा गया वो दिल्ली में एक बहुत पॉश कॉलोनी में उनका घर है, बहुत महंगे घरों में रहते हैं, करोड़पति है और उनके पति भी प्रोफेसर हैं, दोनों वेल एजुकेटेड हैं, दोनों प्रोफेसर है, बहुत पॉश कॉलोनी में रहते हैं, लग्जूरियस लाइफ है, फिर ये स्टोर्स में छोटी छोटी चीजें चोरी क्यों करता है? पता चला क्या करें, वो उनकी आदत बन चुकी है और उस आदत से मजबूर होकर चोरी करते हैं। ये आदत क्यों बना? जब भी पहली बार हमने चोरी करना शुरू किया, अगर वहीं पर हमने अपने आप को ना रोका, तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितने भी हम धनी बने, तब भी हम छोटी मोटी चीजों को भी चोरी करते रहेंगे। वो चोरी पेन की चोरी हो, वो चोरी पैसे की चोरी हो, वो स्टोर में कोई छोटी मोटी चीजों की चोरी हो, ये चलता रहेगा और इससे हम अंदर से करप्ट बन जाते हैं। इसीलिए कहा चोरी करना, ना चोरी करना यम है, और चोरी करने को, चोर को देख, चोर से कंपेयर मत करो। हमें अपने अंदर झांकना है, कहीं ऐसी हमारी एटीट्यूड तो कहीं नहीं है कि जिस, जो काम हमने नहीं किया उस काम का क्रेडिट अगर हम ले रहे हैं, जो पैसे का हम, हमारे हम राइट नहीं रखते हैं उस पैसे को अगर ले रहे हैं, जिस खाने पर हमारा हक नहीं उस खाने को हम खा रहे हैं, जो भी अनलॉफुली हम कमाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हम अनलॉफुली करते हैं, वो सब चोरी होती है और वो हमें कभी भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर नहीं लेकर जा सकता। अगला है ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्य डेफिनेटली जो ब्रह्मचर्य सेलिबेसी को कहते हैं, हमारा जो सेक्सुअल एक्ट है उसको कंट्रोल करना, बट इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द सेक्सुअल एक्ट, क्योंकि अगेन इट इज ऑल्सो द अनदर गेम ऑफ माइंड, ये माइंड का खेल है। दुनिया में बहुत सारे रिलीजन में, बहुत सारे सेक्ट में, जहां ब्रह्मचर्य कंपल्सरी किया गया है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, जैसे कैथोलिक में जो प्रीस्ट फादर या नन होते हैं उनको ब्रह्मचारी होना जरूरी है। हमारे यहाँ अल्दो ये ऑप्शनल है साधु संन्यासी बनना, पर किसी भी तरह से लालच के कारण या मोटिवेशन के कारण बहुत सारे लोग उनके अंदर वैराग्य भाव ना होने के बावजूद भी सन्यासी बन जाते हैं। वो बौद्ध धर्म में हो, बुद्धिस्ट में हो, जैन धर्म में हो या हिंदू धर्म में, और ये जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं बाय फोर्स, वो फोर्स किसी भी कारण से हो, वो लालच हो सकता है, नाम की इच्छा हो सकती है, काम धंधा ना करने की इच्छा हो सकती है, या किसी गुरु ने आपको मोटिवेट कर दिया कि ब्रह्मचर्य पालन करने से ही आपको मोक्ष मिलेगा ये करके, पर आपके अंदर उस तरह की टेंडेंसी नहीं, तो आप सिर्फ फिजिकल एक्ट को, सेक्सुअल एक्ट को रोकते हैं। ऐसा 90% लोग करप्ट होते हैं, मेंटली करप्ट होते हैं, फिजिकली करप्ट होते हैं, सोशियली करप्ट होते हैं, वो बहुत ही भयानक भ्रष्टाचार में, व्यभिचार में लिप्त मिलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे चर्चों में, है ना, जो कैथोलिक स्कूल्स में जो आता है, जो फादर्स की, नॉन्स की जो बहुत घिनौने व्यवहार हमें देखने को मिलता है, उनका जो व्यभिचार का रूप सामने आता है, हमारे जो हिंदू बौद्ध और जैनों में भी जो साधु संन्यासियों में जिस तरह का व्यभिचार दिखता है, उसका कारण है हम ब्रह्मचर्य को ठीक ठीक ना समझते हैं, ना समझा पाते हैं, और ब्रह्मचर्य को जस्ट कैजुअली प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ब्रह्मचर्य इज नॉट द सप्रेशन ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। सेक्स का इच्छा बिल्कुल एक बॉडी की वही उसी तरह की एक डिजायर है, इच्छा है, जैसे आपको भूख लगता है, जैसे आपको प्यास लगता है, जैसे आपको बाथरूम जाना होता है। ये बॉडी की डिजायर है, इच्छा है, नीड्स है। तो यू हैव टू बी सेंसिटिव, वेरी मच सेंसिटिव टू डील विद दैट। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो रिवोल्ट करता है। जब आप सप्रेस करते हैं अपनी नेचुरल डिजायर को, अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को जब आप दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो प्राकृतिक इच्छाएं समय मिलने पर, जब भी आपके अंदर कभी कोई वीक पॉइंट आता है, वीक टाइम आता है, वो छलांग लगा करके स्प्रिंग के तरह डबल ट्रिपल पावर के साथ वापस आते हैं। यहीं से आप व्यभिचारी बन जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि हमें यह समझना ब्रह्मचर्य का भाव क्या है। ब्रह्मचर्य हर तरह की हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज है, ऑल दीज आर कनेक्टेड टू आवर माइंड। जब तक आप उसके लिए कोई मेंटल एफर्ट्स नहीं करते हो, तब तक आपका फिजिकल सप्रेशन कभी भी आपको फायदा नहीं पहुंचाता, उल्टा आपको बहुत ज्यादा खतरनाक रूप से बिगाड़ देता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो लोग डाइटिंग करते हैं और खाना पीना छोड़ के पतले हो जाते हैं, स्लिम बॉडी बन जाते हैं, है ना, जीरो फिगर बन जाते हैं, और देखा गया कि वो लंबे समय तक नहीं चलता है। आप 6 महीने करते हैं, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, क्योंकि आप अपने नेचुरल नीड को, बॉडी का जो नेचुरल डिजायर है, शरीर की जो प्राकृतिक इच्छा है, उसको आप जबरदस्ती दबाते हैं। आप अपने भूख को दबाते हैं, आप अपनी खाने की इच्छा को दबाते हैं, और क्या होता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप मेंटेन करते हैं, उसके बाद फिर अचानक एक से वीक पॉइंट आता है, आप सब भूल जाते हैं, फिर बाकी नॉर्मल लोगों से ज्यादा आप खाने लगते हैं, हर चीज खाने लगते हैं, और आप इतना जल्दी वापस चले जाते हैं। आपने कहा 50 पाउंड आपने 1 साल में, 2 साल में कम किया, 3 साल में कम किया, और जैसे ही आपका वीक टाइम आता है, आप सब वो डाइटिंग को छोड़ देते हैं, आपको 4 महीने नहीं लगता है, आपसे 3 गुना मोटा हो जाते हैं। क्यों? आप ब्लाइंडली जबरदस्ती अपनी बॉडी को, डिजायर को, इच्छा को दबाते हैं। अगर आप स्मार्टली सिस्टमिक वे में माइंड को साथ लेकर के काम करें तो वो डाइटिंग हो, ब्रह्मचर्य हो, लाइफ में किसी भी चीज को आपको रोकना हो, कंट्रोल करना हो, यू हैव टू मेक योर माइंड योर ब्रेन. अगर माइंड को आपने साथ में नहीं लिया, आप फिजिकली फोर्सफुल होकर के सब करते हैं, तो वो आपको एक टेम्पररी फायदा तो दे सकता है. टेम्पररीली आप खुश सोच तो सकते हैं कि नहीं मैंने कुछ अचीव किया, पर इन जनरल आपको उसमें अचीवमेंट नहीं होता है. तो जरूरी क्या है, हम मेंटली माइंड को भी उसमें एंगेज करें. हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर को रोकने की बात कर रहे हैं, माइंड को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है. हमारा जो माइंड है उसको ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, परमात्मा की भक्ति में उसको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत है. ऐसा होता है ना, वो एक बेताल की कहानी सुनी होगी. बेताल को काम चाहिए होता है. वो एक कहानी हमने सुनी थी. तो एक किसान, गरीब किसान था, उसके पास बहुत जमीन थे, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स जमीन थे उसके पास, लैंड थे, लैंडलॉर्ड था, पर गरीब था, अकेला था, उसकी कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं, क्योंकि वो खेतीबाड़ी नहीं कर सकता था और कोई उसको हेल्प भी नहीं कर सकता था. सबको लगता है इसके पास बहुत जमीन है, पर वो गरीब था, पर अच्छा आदमी था. एक बार गांव में एक बड़े साधु आए. साधु बड़े पावरफुल थे, मतलब बड़े तपस्वी साधु थे. उनके पास कुछ सुपर नेचुरल अचीवमेंट थी. सो साधु उनके जब साधु आए रात को, तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने साधु को अपने घर में आश्रय दिया, रहने दिया. एक हफ्ते तक साधु वहां रहे, तो उस गरीब किसान ने जो बन सकता है उनको उन्होंने सत्कार किया, सेवा की, रेस्पेक्ट किया. तो साधु जी जब एक हफ्ते के बाद वापस गए, उन्होंने बोला, तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब बहुत दिल से सेवा की, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन. मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देकर जाना चाहता हूं. किसान ने कहा, नहीं आप कुछ देने की जरूरत नहीं, आपका आशीर्वाद बहुत है. बोले, वही आशीर्वाद के रूप में मेरे पास एक चीज है, मैं आपको देता हूं. क्या है? बोले, मेरे पास एक बेताल है. अब बेताल एक तरह के, मतलब इमेजिनरी स्टोरी है. तो वो बेताल क्या है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं जिन है, तो उसका क्या काम है? बोले, ये बेताल आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते हो, बेताल से जो भी काम कहोगे सब कर देगा. तो आपके पास जमीन होते हुए भी आप गरीब हो, तो आप गरीबी नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा, सब काम आपका ये कर देगा. पर ध्यान रखना, इसमें एक प्रॉब्लम है. इसका प्रॉब्लम है कि इसको 24 घंटे, वो 12 घंटे काम चाहिए. अंधेरा होने के बाद ये काम नहीं करता, पर पूरे दिन भर इसको एंगेज रखना जरूरी है. अगर एक मिनट भी आपने उसको एंगेज नहीं रखा, वो तुम्हें खा जाएगा. दैट इज द ओनली कंडीशन. किसान ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ा है, बहुत सारा काम करने को बाकी है, तो नो प्रॉब्लम, मैं उसको एंगेज रख सकता हूं. साधु चले गए. अगले दिन सुबह होते ही बेताल सुबह उठते ही शुरू हो गया, बोला काम दो. तो किसान बोला, अच्छा जाओ, सालों सालों से जमीन में किसी ने हल नहीं चलाया था, जाओ हल चलाओ. तो पर मजेदार बात है, दो तीन घंटे के बाद बेताल वापस आ गया. किसान ने बोला, वापस क्यों आ गया? बोले, मैंने सारे जमीन में हल चला के आ गया. और वो बेताल था, वो काम को बहुत फास्ट करता था. अच्छा, तो अब फिर आते ही बोला, काम दो. अच्छा काम, अच्छा चलो उसमें सब वो इरिगेशन करके आओ, सब पानी सिंच के आओ. तो आ गया. 12 घंटे में वो जो काम उसको 12 साल लगना चाहिए, 12 महीने लगना चाहिए, अभी 12 घंटे सूर्य सनसेट हुआ ही नहीं, सूर्यास्त हुआ ही नहीं, वो काम काम मांग मांग करके थका दिया है. किसान एक दिन में थक गया, बोला इतना काम मैं कहां से लाऊं. अब जैसे तैसे काम दे दे करके रात हो गई, तो वो रात को थोड़ा रेस्ट किया. किसान सोचने लगा, ये तो भला मैंने गले में डाल दिया सांप, इसको काम में कहां से इतना लाऊंगा, ये तो मुझे खा जाएगा, ये तो उल्टा मुझे हेल्प क्या करेगा, मुझे मारेगा. रात भर नींद नहीं आई, सोचने लगा, बेताल को काम चाहिए, काम चाहिए, काम ना दो तुम्हें खा जाएगा। रात भर नींद नहीं आई, सोचते 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 उसको एक चीज क्लिक किया। अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही सूरज उगने लगा, बेताल आ गया, बोला काम दो। किसान ने बोला एक काम करो, एक बांस का पेड़ लाओ, बांस समझते बांबो ट्री, वो काट के लाया, बोला इसको क्लीन करो, बोला इसको इसकी जो ब्रांचेस वगैरह इसको साफ करो करो, ठीक है कर दिया। बोले इसको जमीन में गाड़ो, उसने जमीन में गाड़ा। बोले इसके ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ा। बोले नीचे उतरो, नीचे उतरा। बोला ऊपर चढ़ते रहो नीचे उतरते रहो जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम ना दूं। अब वो ट्रिक समझ में आ गया, अब वो बेताल को अपने काम में लगाता है। जब खाली टाइम होता है बेताल बोलता है काम दो, तो उसको कहता है ये बांस के ऊपर चढ़ते रहना उतरते रहना। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, हमारा आपका मन भी बेताल के उसी इस कहानी के बेताल की तरह है। इसको 24 घंटे काम चाहिए, चित्तवृत्ति वृत्ति उसको 24 घंटे, तो बेताल को तो 12 घंटे का काम चाहिए था, इसको तो 24 घंटे चाहिए। अब सो भी जाओ, आपका बॉडी सेंसेस थक के सो भी जाए तो भी वो सपना बनाने लग जाता है, वो ड्रीम बनाने लग जाता है, इसको काम चाहिए। जब तक आप इसको एंगेज नहीं रखोगे, जब खाली मन होगा, आपको पता है जब आपका मन खाली हो तो मन कहां जाता है, जिन चीजों को आप दबा के रखते हो, जिन चीजों को आप करने नहीं देते हो, मन उन्हीं चीजों के प्रति बार बार जाएगा, बार बार जाएगा। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग जंगल भाग जाते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर ह्यूमन हैबिटेट में रहेंगे, गांव में शहर में रहेंगे, तो अपोजिट जेंडर के लोगों को देखेंगे, और जब भी मन खाली होगा विचार वही आएगा, क्योंकि उनके पास वो है नहीं, क्योंकि उसी को रोकना है। तो जंगल चले जाएंगे, कम से कम कोई इंस्टिगेट करने वाला तो नहीं होगा ना, कम से कम मन को खाली रखते ही वो उन्हीं चीजों में जाता है जिन चीजों से आप उसको रोकते हो। बिल्कुल वैसे ही जब आपका छोटा बच्चा होता है, बच्चा वैसे ही बैठा रहे, अपनी मर्जी से खेलता रहे, सब कुछ ठीक है। बच्चे को आपने अगर कह दिया कि 3 घंटे तक तुम्हें सुसु नहीं करना, तुम्हें टॉयलेट नहीं जाना, तो बच्चा 3 घंटे के अंदर 30 बार आपको बोलेगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, सुसु करने जाना है। और ये जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि उसको सुसु नहीं आता है वो ऐसे बोलता है, उसको सुसु आएगा भी। क्यों? ये माइंड का प्रॉब्लम है। जिसको आप रोकते हो वो बाउंस करके आता है। जब भी माइंड को किसी चीज से रोकते हो वही माइंड बाउंस करके आता है। इसीलिए कभी माइंड को जबरदस्ती नहीं रोकना। फिजिकली जब भी आप कोई चीज को रोकने की कोशिश करते हो, माइंड को कन्विंस करो, माइंड को साथ लेकर चलो, और माइंड को और कहीं एंगेज करो। जब तक आप बिजी हो, जब आप मेंटली आप और कहीं बिजी हो, आपको वो चीजें आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, वो थॉट आएगा ही नहीं। जैसे ही आप फ्री हो गए, वैकेशन में आ गया माइंड, अब वो उन्हीं चीजों को याद करेगा जो आपने उसे छुड़ा लिया था। अब कंक्लूड करेंगे, ब्रह्मचर्य में आप क्या करेंगे? तो हमारे ऋषि आचार्य कहते हैं, तो जब भी तुम्हारा मन खाली हो, जब तुम भक्ति करते हो, जब आप रियल भक्ति करते हो, अपने मन को परमात्मा में लगाने की कोशिश करो, अच्छे किताब स्वाध्याय करो, अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ मिलो, अच्छे वो परमात्मा की भक्ति करो। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताया, क्योंकि एटीट्यूड बहुत बहुत मायने रखता है, और हमारे शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर बात आती है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यपश्यति सपश्यति। सपोज आपने एक ऐसा एटीट्यूड पैदा कर दिया, क्या कभी आप देखते हैं जिन जिन आपकी जो अपोजिट जेंडर में जो भी होते हैं, मैं ब्रह्मचर्य की बात करता हूं, हमारे माँ हैं, बहन हैं, कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके प्रति हमारी भक्ति होती है, रिस्पेक्ट होता है, कभी इस तरह के गलत विचार नहीं आता है। पर जो दूसरे होते हैं, जो आपसे क्लोज नहीं है, उनको देखने पर आपके मन में उनके प्रति खराब विचार आ सकता है। ऋषि यही कहता है, अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो माइंड को भी साथ में लो और एटीट्यूड को भी ठीक से रखो। क्या एटीट्यूड? कहते हैं मातृवत परदारेषु, दूसरों की महिलाओं में, वो बेटी हो, दूसरों की बेटी हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, उनमें अपनी माँ की छवि देखने की कोशिश करो। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो फिर तुम्हारे अंदर वो विचार नहीं आएंगे, वो नेगेटिव विचार नहीं आएगा। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्, अगर चोरी करने की टेंडेंसी को रोकना चाहते हो तो क्या करो, दूसरों का कितने भी महंगा चीज हो उसको पत्थर कूड़े कचड़े की तरह समझो। आत्मवत सर्वभूतेषु, अगर सब प्राणियों के किसी के प्रति नफरत नहीं करना चाहते हो, वो आजकल कहते हैं ना वो रिलीजियस टॉलरेंस और वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये सब चीजें आर्टिफिशियली होता है। अंदर से तो हम हेट करते हैं, ऊपर से टॉलरेट करते हैं। हमारा शास्त्र कहता है जरूरी नहीं है टॉलरेट करने की। जब तुम सब में खुद को देखने लगो, वंस यू स्टार्टेड टू सी अदर्स एज यू, एज योर सेल्फ, जब सबको तुम अपना जैसा समझने लगो तो तुम नफरत नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य के लिए सभी महिलाओं में मां का दृष्टि लाओ, चोरी का भावना ना आए तो दूसरों के चीजों को कूड़ा कचड़ा समझो, बड़ा प्राइसलेस समझो, यूजलेस समझो। अपनी मेहनत की कमाई को, अपने हार्ड वर्क से कमाए गए चीजों को आप प्रेशियस समझो और सभी प्राणियों को अपना जैसा समझो। सभी प्राणियों को, सब एनिमल्स को, प्राणी की बात कही, ह्यूमन बींग की नहीं, ऑल लाइफ लाइव्स, सब लाइफ्स को अपना जैसा समझो। देखना तुम क्रूएल बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर वो अब्यूसिव नेचर बन ही नहीं सकता, तुम वायलेंट बन ही नहीं सकते हो। तो जब तक हम वो एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यम का जो अंतिम है, जो लास्ट है अपरिग्रह, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, और उसके साथ नियम के जो पांच शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, उसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।